विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण परिप्रेक्ष्य राज्य स्वास्थ्य प्लानों पर एक विशिष्ट टैक्स लगाता है। 2009 से कैलिफोर्निया ने आमतौर पर कुछ स्वास्थ्य प्लानों जैसे कि काइजर परमानेंटे पर एक विशिष्ट टैक्स लगाया है। इस टैक्स को मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर टैक्स, स्वास्थ्य प्लान टैक्स कहा जाता है। समय के साथ यह टैक्स अलग अलग तरीके से काम करता रहा है। इस समय यह उन लोगों की संख्या के आधार पर प्लानों पर शुल्क लगाता है जिन्हें वे स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं, जिनमें मेडिकल वाले लोग भी शामिल हैं। मेडिकल वाले लोगों के लिए इस टैक्स की दर अन्य प्रकार के स्वास्थ्य कवरेज की तुलना में अधिक है। मेडिकल एक संघीय राज्य प्रोग्राम है जो कम आय वाले लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। संघीय सरकार और राज्य प्रोग्राम की लागत साझा करता है। स्वास्थ्य प्लान टैक्स लगाकर राज्य अधिक संघीय निधि प्राप्त कर सकता है। राज्य दो उद्देश्यों के लिए टैक्स का इस्तेमाल करता है। स्वास्थ्य प्लान टैक्स द्वारा जुटाई गई राजस्व राशि समय के साथ साथ बदल गई है। हाल ही की विधि कार्रवाई के आधार पर हमारा अनुमान है कि इस टैक्स से राज्य को हर वर्ष सालाना $7 बिलियन से $8 बिलियन के बीच मिलने की उम्मीद है। राज्य इस पैसे का इस्तेमाल दो उद्देश्यों के लिए करता है। मेडिकल में मौजूदा लागतों का भुगतान करना। कुछ राजस्व मेडिकल प्रोग्राम में मौजूदा लागतों का भुगतान करने में मदद करता है। टैक्स राजस्व का इस तरह से इस्तेमाल करने से राज्य को मेडिकल पर सामान्य निधि से कम धन खर्च करना पड़ता है। सामान्य कोष वह खाता है जिसके इस्तेमाल राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जेलों सहित अधिकांश सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है। इस वर्ष मेडिकल को सामान्य निधि से लगभग $35 बिलियन मिलने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य प्लान टैक्स राजस्व राज्य सामान्य कोष की लागतों को कम करता है। मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य प्रोग्रामों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि। थोड़ा राजस्व मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य प्रोग्रामों के लिए वित्त पोषण को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए राज्य डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया जाने वाला मेडिकल भुगतान बढ़ा रहा है। यह स्वास्थ्य प्लान टैक्स राजस्व का एक नया उपयोग है। निधि में इनमें से कुछ वृद्धियाँ 2024 में शुरू हुई हैं, लेकिन अधिकांश 2025 और 2026 में शुरू होंगी। जब ये सभी 2026 में शुरू हो जाएंगी तो वृद्धि के परिणाम स्वरूप मेडिकल के लिए हर वर्ष लगभग $4 बिलियन की वृद्धि होगी। इस राशि का लगभग आधा हिस्सा स्वास्थ्य प्लान के टैक्स आएगा, बाकी राशि बढ़े हुए संघीय निधिकरण से आएगी। टैक्स समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसे फिर से अनुमोदित नहीं किया जाता। विधानमंडल ने इस टैक्स को स्थायी रूप से अनुमोदित नहीं किया है। इसकी बजाय उसने इसे एक बार में कुछ वर्षों के लिए अनुमोदित किया है। संघीय सरकार को भी टैक्स को अनुमोदित करना होगा। टैक्स को हाल ही में 2023 में अनुमोदित किया गया था। यह 2026 के अंत में समाप्त हो जाएगा जब तक कि विधानमंडल और संघीय सरकार इसे फिर से अनुमोदित नहीं कर देती। प्रस्ताव मौजूदा स्वास्थ्य प्लान टैक्स को स्थायी बनाता है। प्रस्ताव 35 मौजूदा स्वास्थ्य प्लान टैक्स को 2027 से स्थायी बनाता है। टैक्स लगाने के लिए राज्य को अभी भी संघ के अनुमोदन की जरूरत होगी। टैक्स उन लोगों की संख्या पर आधारित रहेगा जिन्हें स्वास्थ्य प्लान स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते हैं। यह प्रस्ताव राज्य की कुछ सीमाओं के भीतर संघ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यदि जरूरी हो तो टैक्स को बदलने की अनुमति देता है। राज्य टैक्स राजस्व का इस्तेमाल कैसे करता है इस पर नियम बनाता है। स्वास्थ्य प्लान टैक्स को स्थायी बनाने के अलावा प्रस्ताव 35 राजस्व का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर नियम बनाता है। आमतौर पर इन नियमों के तहत राज्य को मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य प्रोग्रामों के लिए निधिकरण को बढ़ाने के लिए राजस्व का अधिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये नियम अल्पविधि 2025 और 2026 में और दीर्घावधि 2027 और उसके बाद में अलग अलग होते हैं। प्रस्ताव 35 यह बदलता है कि वर्तमान कानून की तुलना में किन मेडिकल सेवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रोग्रामों को निधि में वृद्धि मिलती है। राजकोषीय प्रभाव अल्पावधि में तीन प्रमुख राजकोषीय प्रभाव। अल्पावधि में 2025 और 2026 में प्रस्ताव 35 के निम्नलिखित प्रमुख राजकोषीय प्रभाव होंगे। राज्य टैक्स राजस्व में कोई बदलाव नहीं। प्रस्ताव 35 स्वास्थ्य प्लानों पर मौजूद अस्थायी टैक्स में कोई बदलाव नहीं करता है जो 2026 के अंत में समाप्त हो रहा है। इस कारण से इस समयावधि में प्रस्ताव का राज्य टैक्स राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रोग्रामों के लिए बढ़ा हुआ वित्त पोषण। प्रस्ताव 35 मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य प्रोग्रामों के लिए वित्त पोषण बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार राज्य को वित्त पोषण बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्लान टैक्स राजस्व का अधिक इस्तेमाल करना होगा। वित्त पोषण में कुल वृद्धि संभवतः हर वर्ष लगभग $2 बिलियन और $5 बिलियन के बीच होगी। इस राशि का लगभग आधा हिस्सा स्वास्थ्य प्लानों पर टैक्स से आएगा। चूंकि संघीय सरकार मेडिकल की लागत राज्य के साथ साझा करती है, इसलिए बाकी फंडिंग वृद्धि संघीय वित्त पोषण से आएगी। सभी निधिकरण स्रोतों को शामिल करते हुए मेडिकल को इस वर्ष $150 बिलियन से अधिक निधि मिलने की उम्मीद है। राज्य की लागतों में वृद्धि प्रस्ताव 35 राज्य की लागतों को बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य प्लान टैक्स राजस्व की राशि को कम करता है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल में मौजूदा लागतों का भुगतान करने में मदद के लिए किया जा सकता है। इसकी बजाय राज्य को संभवतः उस उद्देश्य के लिए सामान्य निधि से अधिक धनराशि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर्ष 2025 और 2026 में वार्षिक लागत लगभग $1 बिलियन से $2 बिलियन के बीच होगी। यह राशियां राज्य के कुल सामान्य निधि बजट के 1% और 0.5% के बीच होती हैं। दीर्घकाल में अज्ञात राजकोषीय प्रभाव दीर्घकाल 2027 और उसके बाद में प्रस्ताव 35 स्वास्थ्य प्लानों पर अस्थायी टैक्स को स्थायी बनाता है और धनराशि को कैसे खर्च किया जाए इस बारे में नए नियम बनाता है। इन बदलावों का राजकोषीय प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए राज्य भविष्य में टैक्स को स्वीकृति दे सकता है, जैसा कि उसने अतीत में किया है, भले ही प्रस्ताव मतदाताओं द्वारा पारित ना किया गया हो। साथ ही यह अनिश्चित है कि संघीय सरकार भविष्य में कितना बड़ा टैक्स स्वीकार करेगी। इन अनिश्चित कारकों को देखते हुए टैक्स राजस्व स्वास्थ्य प्रोग्राम निधि और राज्य लागतों पर प्रस्ताव के दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात हैं। राज्य व्यय सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ाता है। कैलिफोर्निया के संविधान में विभिन्न नियम हैं जो राज्य के बजट को प्रभावित करते हैं। एक नियम यह सीमित करता है कि राज्य टैक्स राजस्व को किसी भी उद्देश्य पर हर वर्ष कितना खर्च किया जा सकता है। मतदाता एक बार में 4 वर्ष तक इस सीमा को बढ़ा सकते हैं। इन नियमों के अनुरूप प्रस्ताव 35 अस्थायी रूप से 4 वर्ष के लिए स्वास्थ्य प्लान टैक्स के आकार के अनुसार इस सीमा को बढ़ाता है। अस्थायी वृद्धि समाप्त होने के बाद राज्य की व्यय सीमा पर प्रस्ताव का दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अज्ञात है कि प्रस्ताव 35 भविष्य में राज्य टैक्स राजस्व को कैसे प्रभावित करेगा। मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए sostcacsmeasurecontribution-2024-BALLOTMEASURE-CONTRIBUTION-TOTALS पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html पर जाएं।